दिन भर 3 जुलाई दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। बिहार में गठबंधन के अंदर हो रही बयानबाजियों के बीच नीतीश ने स्पष्ट किया, महागठबंधन की सरकार को कोई खतरा नहीं।
अलग अलग पार्टियों का अलग अलग विचार होता तो उस हिसाब से पार्टियां निर्णय लेती, इसमें किसी तरह की कोई बात अब इसको लेकर कुछ नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू कर रहे हैं इसराइल की अपनी यात्रा।
बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारत उठा रहा है। पहली बार जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1950 में इसराइल को मान्यता दिए।
चर्चा होगी दलितों के लिए कल्याणकारी स्कीमों के बजट में आई गिरावट की, और होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महागठबंधन सरकार के कार्यक्रम लागू करना उनकी प्राथमिकता है। नीतीश कुमार का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में तनाव की खबरें हैं। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया है। इसे लेकर महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा था। महागठबंधन की तीसरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। नीतीश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एक वैकल्पिक एजेंडा तय करना चाहिए और जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। इसके आधार पर ही विपक्ष की गोलबंदी प्रभावी हो सकती है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने पड़ोसी देशों की ओर से रखी गई शर्तों पर अपने देश का जवाब सामने रखा है। सऊदी अरब समेत कतर के 5 पड़ोसी देशों ने उसके सामने ईरान के साथ रिश्तों में कटौती, अल जजीरा चैनल को बंद करने और मुस्लिम ब्रदरहुड को मदद बंद करने की मांग रखी है। कतर का कहना है कि उसके सामने जानबूझकर ऐसी मांगें रखी गई हैं जिन्हें खारिज कर दिया जाए। सऊदी अरब और बाकी देश आगे के कदम पर विचार के लिए बुधवार को काहिरा में मिलेंगे। इन देशों ने कतर पर कूटनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी लगाई हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत में कहा है कि दोनों देशों के संबंधों को नकारात्मक कारक प्रभावित कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिकार वाले विवादित द्वीप के करीब एक अमरीकी युद्ध पोत पहुंचने के कुछ देर बाद हुई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गंग श्वांग ने इसे राजनीतिक और सैन्य उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा, अमरीका ने एक बार फिर चीन के शीशा द्वीप के पास की समुद्री सीमा में अपना युद्धपोत भेजा। इसके लिए अनुमति नहीं ली गई। ये चीन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये चीन की संप्रभुता का अतिक्रमण है। ये राजनीतिक और सैन्य लिहाज से गंभीर उकसावे वाली कार्रवाई है। चीन इस पर गहरा असंतोष जाहिर करता है। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मन अधिकारियों के मुताबिक देश के दक्षिणी हिस्से में हुए एक सड़क हादसे में एक बस में सवार 18 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बस में 46 बुजुर्ग यात्री सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 2 ड्राइवर पूरी तरह झुलस गए। अधिकारियों के मुताबिक करीब 30 लोग घायल हुए हैं जिनमें से कुछ की स्थिति गंभीर है। जर्मनी में सितंबर में होने वाले आम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी ने बेरोजगारी दर घटाने का वादा किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि साल 2025 तक बेरोजगारी दर 3% से नीचे लाई जाएगी। फिलहाल ये दर 5.5% है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा,
Wir setzen das Ziel, dass wir 2025 Vollbeschäftigung haben wollen. Wir glauben,
हम साल 2025 तक हर किसी को रोजगार देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम मानते हैं कि ये मुमकिन है। अगर हम साल 2005 की बात करें, उस वक्त अगर हमने ये लक्ष्य रखा होता तो लोग हम पर हंसते। मार्च 2006 में 50 लाख लोग बेरोजगार थे। साल 2000 तक बेरोजगारों की संख्या 30 लाख रह गई। साल 2005 की तुलना में साल 2017 में बेरोजगारी की संख्या आधी रह गई। अब हम साल 2025 तक इसे और भी आधा कर सकते हैं। ये थे जर्मन चांसलर के शब्द। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से अलग करते हुए कहा है कि वैकल्पिक राजनीति अभी भी वक्त की मांग है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे एजेंडा तय करना चाहिए। पटना में लोक संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वो 2019 के लिए विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पद का दावेदार नहीं है। बिहार में वादों को लागू करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने साफ किया कि बिहार में महागठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। पटना से मनीष शांडिल की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही बिहार में जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन वाली सरकार के भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। कल तक इस चुनाव के बहाने तीखी बयानबाजी हुई। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ना तो कांग्रेस पार्टी की तरह अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देते रहे हैं और ना ही वे किसी के पिछलग्गू हैं। मगर आज इस खिस्तान को नीतीश कुमार ने ही खत्म करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार पर कोई संकट नहीं है।
अलग अलग पार्टियों का अलग अलग विचार होता, सोच होता, तो उस हिसाब से पार्टियां निर्णय लेती, इसमें किसी तरह की कोई बात अब इसको लेकर कुछ नहीं। हम लोगों की तरफ से जिनका जो स्टैंड है अब वो सब कुछ प्रकट है और वह कोई इशू नहीं। और हमारे बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है इसके जो कार्यक्रम है उसको लागू करना हम लोगों की प्राथमिकता है और उसी काम में हम सब लगे हुए हैं।
नीतीश ने ये बातें लोक संवाद कार्यक्रम के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इसमें उन्होंने यह भी साफ किया कि ना वो 2019 के आम चुनावों के लिए विपक्ष का चेहरा हैं और ना ही खुद को इसके लिए योग्य समझते हैं। ये बात कांग्रेस के लिए राहत वाली मानी जा रही है। वहीं बिहार की प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता प्रेम कुमार कहते हैं,
आगे और लड़ाई बढ़ेगा तीनों विचारधारा के मेन गठबंधन है जाकर के। ये गठबंधन का उद्देश्य सरकार बैठना जाकर के और अपने गद्दी को बचाने के लिए नीतीश कुमार लोगों खींच कर ले चल रहे हैं अगर मानो।
नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी आज की ही तरह कई मुद्दों पर अपने गठबंधन सहयोगियों से अलग राय रखते थे। ऐसे में जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति चुनाव, जीएसटी जैसे मुद्दों पर महागठबंधन की अलग अलग राय सामने आना हैरानी की बात नहीं है। लेकिन गठबंधन है तो इसके अंतर्विरोध आगे भी सामने आते रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं,
लेकिन अभी ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि गठबंधन का मतलब ये इतिहास है। वो इलेक्शन लड़े हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर लड़े हैं, उनका एक वैचारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। लेकिन एट द सेम टाइम वो पार्टी नहीं ना, गठबंधन है, तो उनमें बहुत सारे अंतर्द्वंद हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं। और जब सरकार में चल रहे हैं तो दुविधाएं भी बहुत सारा नया नया दुविधाएं भी सामने आती हैं।
जानकार महागठबंधन का जो सबसे बड़ा अंतर्विरोध देख रहे हैं वो यह कि राजद गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन सरकार का मुखिया जदयू से है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
भारत और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में स्थापित हुए थे, लेकिन किसी भारतीय प्रधानमंत्री को वहां का आधिकारिक दौरा करने में 25 साल का लंबा वक्त लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को इसराइल में होंगे और वहां अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी करेंगे। क्या हैं इस दौरे के मायने? बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने बात की मध्य पूर्व मामलों के जानकार प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा से।
जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारत उठा रहा है। पहली बार जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1950 में इसराइल को मान्यता दिए और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री 92 जनवरी में जब से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए, ऐसा मौका पहली बार आ रहा है। इसराइल की तरफ से वहां के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और दूसरे अन्य लीडर लगातार आते रहे हैं पिछले 20-25 साल से, लेकिन हमारे यहाँ से सिर्फ होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और देश मंत्री गए हैं।
इसराइल भारत का अहम डिफेंस सप्लायर रहा है, तो इस दौरे पर भारत के लिए क्या क्या अहम सौदे हो सकते हैं?
20-25 साल से इसराइल बहुत अहम सप्लायर बन के उभरा है। मेरे ख्याल से दूसरा देश ऐसा है रूस के बाद जो भारत वहाँ से निर्यात करता है, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वहाँ से काफी महत्वपूर्ण वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक गेयर और मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन, काफी गहरे दिफाई संबंध एस्टैब्लिश हुए हैं। हालांकि हार्ड करेंसी में इसराइल मांगता है सभी वेपन्स के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो और भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो धीरे धीरे से, चाहे मिसाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक गियर हो। या
सर, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई, जैसा पिछले दिनों ये शब्द बड़ा चर्चा में रहा है, क्या इस संबंध में भी प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मंच साझा करके कोई संदेश देंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर?
दोनों देशों में कई लेवल पे आतंकवाद के लिए रेगुलर मीटिंग होती आ रही है कई सालों से। दोनों देशों के बीच में काफी गहरे इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जहां भी गए हैं, चाहे सऊदी अरेबिया में या कतार में या टर्की में या इमारात में, और वहां से जो भी अरब ममालिक से या मुस्लिम देशों से नेता आए हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए काफी जोर से उन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन इसराइल का दौरे से एक नई दिशा मिलती है, क्योंकि इसराइल काफी फ्रंटलाइन देश माना जाता है इस आतंकवाद की लड़ाई में, जो इतने सालों से लड़ रहा है अमेरिका के साथ और दूसरे अन्य देशों के साथ। हालांकि फलस्तीन को हम सपोर्ट करते हैं,
इससे फलस्तीनी क्षेत्र से भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ सकते हैं? और इसी से जुड़ा सवाल कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत से आप इसराइल के संबंधों और भारत के फलस्तीनी क्षेत्र से संबंधों को आप किस तरह आंकते हैं?
देखिए, पहले से ही भारत फलस्तीन के मामले में काफी जोश खरोश से सपोर्ट करता आ रहा था, लेकिन थोड़ी नरमी हुई है जब से इसराइल के साथ संबंध गहरे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि खुद अरब देश जैसे मिस्र, उर्दुन और ओमान, कतार, मोराको, फलस्तीनी प्रेसिडेंट अब्बास पीएलओ खुद ही इसराइल से बातचीत करते आ रहे हैं, और अरब देशों के ताल्लुकात को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। तो उस बैकग्राउंड में जो भी भारत प्रयास कर रहा है तो उनसे सलाह मशवरा के बैकग्राउंड में ही कर रहा है। और फलस्तीन के प्रेसिडेंट अब्बास यहाँ आए हुए थे, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए ही जब हम इसराइल के साथ गहराई से मजबूत कर रहे हैं संबंध।
जेएनयू के प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा से बात कर रहे थे कुलदीप मिश्र। भारत में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में दो दलित प्रत्याशी एक दूसरे के सामने हैं, वहीं केंद्रीय बजट में दलितों के लिए होने वाले आवंटन पर सवाल उठ रहे हैं। एक अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक यूपीए सरकार आखिरी बजट में दलितों के लिए कल्याणकारी स्कीमों के मुकाबले एनडीए सरकार के पिछले बजट में इस तरह की स्कीमों में गिरावट आई है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
भारत में दलितों की आबादी 16% से ज्यादा है और पिछले बजट में दलित समाज के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आवंटन हुआ था। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पूर्व सचिव पीएस कृष्णन के हवाले से लिखा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि आबादी को देखते हुए ये राशि बेहद कम है और इसमें कमी भी आ रही है। खबरों के अनुसार 2013 के कुल सालाना बजट में से दलितों के लिए घोषित स्कीमों का प्रतिशत 2.49 था। 2016-17 के बजट में यही आंकड़ा गिरकर 1.96 हो गया, यानी गिरावट साफ दिखती है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दलित नेता उदित राज ने बीबीसी से हुई बातचीत में माना कि बात गंभीर है और वे इसे दोबारा सरकार के सामने उठाएंगे। उदित राज ने कहा,
शुरू से ही 1-2 दशक से ही जो भी पैसा आता है वो पैसा अन्यत्र खर्च कर लिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि इसको तो दलित ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से मिसयूज होता है। जब बजट कम हो जाए तो उससे प्रतिकूल असर तो पड़ता ही है, और बजट जाता है तो भी खर्च इनके लिए नहीं होता, जबकि व्यक्ति आधारित बस्ती आधारित खर्च होना चाहिए। अर्थात तो व्यक्ति SC ST का हो, बस्ती में भी SC ST के लोग हों, जब वहाँ ये पैसा लगे तभी ये माना जा सकता है कि स्पेशल कंपोनमेंट प्लान के तहत पैसा खर्च हो रहा है।
उदित राज के मुताबिक जब उन्होंने सरकार से बजट में कटौती की बात उठाई थी तो उनसे कहा भी गया था कि राज्यों के लिए बढ़ाए जा रहे आवंटन से इसकी भरपाई भी की जाएगी, लेकिन जानकारों का मानना है कि समस्या इतनी साधारण नहीं है जितनी सिर्फ आंकड़ों में दिखाई पड़ती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार को लगता है कि दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण मामले में सभी राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति की कमी रही है। प्रोफेसर विवेक कुमार,
विगत कुछ वर्षों से ये देखने में आया है कि कुछ डिपार्टमेंट ये कहने लगे हैं कि नहीं, हमारे पास जो है उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करेगा उनके लिए कोई अलहदा उसके लिए बजट नहीं है। इसी तरह रोड एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह क्या करेंगे, उनके लिए कैसे बनाएंगे, ये भी मना कर रहे हैं। और आपको पता है कि कभी कभी एक शेड्यूल कास्ट का जो फंड है वो दूसरे मद में भी ट्रांसफर कर दिया जाता था।
दरअसल 2011-12 में जाधव समिति की सिफारिशों के बाद अनुसूचित जाति उप योजना के बारे में सरकार ने सभी विभागों को दलितों के विकास के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए थे। गौरतलब ये भी है कि मौजूदा सरकार के पिछले बजट पेश करने पर भी राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कम बताते हुए सरकार से इसे बढ़ाने की अपील की थी। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। उत्तर प्रदेश में एक RTI के जवाब में पता चला है कि पिछले 5 साल में गौशालाओं और गौरक्षा संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान का करीब 90% हिस्सा एक ही संस्था को जारी किया गया है। 2012 से मार्च 2017 तक लखनऊ के एक NGO को गौ सेवा आयोग की ओर से करीब 9 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस दौरान राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अनुदान मिलने वाली इस संस्था से जुड़ी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
इसी साल मार्च महीने में जब उत्तर प्रदेश में BJP सरकार बनी थी तो उसके कुछ ही दिन बाद अपर्णा यादव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को अपनी गौशाला दिखाने लाई थी। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और खुद भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं। उस समय योगी के गौशाला दौरे के राजनीतिक मतलब निकाले गए थे, लेकिन अपर्णा यादव शायद योगी को अपने गो प्रेम के बारे में बताना चाहती थी। अब एक RTI से ये भी पता चला है कि राज्य में गायों के हित के लिए बने गो सेवा आयोग अपर्णा यादव की इस गो भक्ति से वाकिफ था और उसने इसका उन्हें भरपूर इनाम भी दिया है। पिछले 5 साल में आयोग ने राज्य भर में जितनी भी धनराशि जारी की उसका 86.4% हिस्सा उस संस्था को दिया है जिससे अपर्णा यादव जुड़ी हैं। आयोग से ये जानकारी हासिल करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर कहती हैं,
2012-13 से लेके 2016-17 तक जो धनराशि दी गई है उसपे जिन संस्थाओं को उसमें सबसे ज्यादा धनराशि इन 5 वर्षों में कान्हा उत्सव को दी गई है, तो पूरी धनराशि का 86% लगभग है। कान्हा उत्सव इसको जीवाश्म संस्था संचालित करती है, उसको दी गई है।
RTI के मुताबिक 2012 से 2017 तक 5 साल के दौरान आयोग ने 9,66,00,000 रुपए का कुल अनुदान जारी किया। इसमें 8,35,00,000 रुपए सिर्फ जीवाश्रय संस्था को ही दिए गए। वहीं मौजूदा अवधि में यानी 2017-18 में भी आयोग ने 26 जून तक कई गौशालाओं को 1,05,00,000 रुपए के अनुदान दिए, लेकिन इस धनराशि में से जीवाश्रय संस्था को कुछ नहीं मिला। 5 साल तक 80% अनुदान एक ही संस्था को कैसे मिलता रहा, इस सवाल के जवाब में पिछली सरकार के दौरान राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे अमित त्रिपाठी बताते हैं,
जब तक जिला की कमेटी रिकमेंड नहीं करे किसी भी गौशाला, किसी पालन आयुक्त की कमेटी बनाया है, बहुत जन से आएगी नहीं, और जहाँ से आई उनको दिया गया, गौ वंश की संख्या के आधार पर होता है, नाम से उसकी बड़ी गौ वंश की इतने दर है और छोटे गौ वंश की इतने है।
अमित त्रिपाठी का कहना है कि गो सेवा आयोग के पास अपनी कोई फंडिंग नहीं है और आयोग की भूमिका सिर्फ सिफारिश को आगे बढ़ाने भर की है।
गो सेवा आयोग के पास अपनी कोई फंडिंग नहीं है, जो कृषि उत्पादन मंडी का 1% सेस का मिलता है, सेस का 1%, और वो भी वो रिकमेंड अपने यहाँ से पास करके अब तक पैसा आरटीजीएस करते आयोग को, फंड है ही नहीं है तो रिलीज करते करें।
इस बारे में अपर्णा यादव से भी बात करने की कोशिश की गई लेकिन संभव नहीं हो पाया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जीवाश्रय संस्था में अपर्णा यादव का नाम नहीं है लेकिन जानकारों के मुताबिक ये उन्हीं की संस्था है। नूतन ठाकुर कहती हैं,
अपर्णा यादव जी के जरिए ये कहा गया था कि वो भी गो सेवा करते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को खाना ऊपर दिखाने के लिए आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री जी वहाँ गए तब उन्होंने कहा था कि इसका संचालन उनके द्वारा किया जाता है।
गो सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि अनुदान के लिए गौशालाओं का चयन गायों की संख्या के आधार पर होता है और इसके लिए कई और मानक भी बने हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि सिर्फ एक गौशाला को फंड का लगभग पूरा हिस्सा मिलते रहना चौंकाने वाला जरूर है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
सोमवार के दिन आपके साथ हमें भी इंतजार रहता है आपके पत्रों का, जिसमें होती है हमारी कार्यक्रमों की समीक्षा, तारीफ और आपकी शिकायतें भी। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और इंदु पांडे।
आपकी राय, नमस्कार। स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह
इंदु पांडे।
हमेशा की तरह तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप कभी कभी आती हैं। अच्छा, तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक श्रोता से जो सीतामढ़ी से
जी
दिल्ली आए और हमारे दफ्तर में आए। आपका नाम क्या है?
कृष्ण मोहन कुमार जी, सीतामढ़ी बिहार से मैं आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर, मेरे गांव का नाम बेला मुस्पकौनी है जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से 36 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ नेपाल बॉर्डर के पास। इस तरह है कि नेपाल में जो FM सब है कुछ, वो जैसे रेडियो मिथिला हो गया और जनकपुर FM, ये सब वो आपके कार्यक्रम सुबह और शाम को वो प्रसारित करते हैं। उसके माध्यम से मैं ये सुबह शाम कार्यक्रम सुनता हूँ जो काफ़ी क्लियर सुनाई देती है। काफ़ी सारी जानकारी कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट वगैरह और सारे खेल समाचार, ये विवेचना, नई दुनिया जहाँ, सब ये सब कार्यक्रम देती है, तो ये इनके बारे में काफ़ी सारी जानकारी हम लोगों को मिल जाती।
आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बातचीत थी हमारे श्रोता की जो हमें बहुत गौर से सुनते हैं और हमारी जो पत्रकारिता जिस तरह की हम लोग करते हैं उसकी उन्होंने तारीफ भी की है। मैं देख रहा हूँ आपके पास पोस्ट कार्ड हैं और ईमेल्स भी हैं, तो इंदु जी पहला पोस्ट कार्ड।
पहला पोस्ट कार्ड हम लेते हैं DR भार्गव जी का, गांव बिरखम पिथौरागढ़ यूके से, यूके यानी कि उत्तराखंड
जी। क्या लिखते हैं?
लिखते हैं कि जख्मी सूबेदार DR भार्गव, निवेदन करता हूं कि आपका हिंदी कार्यक्रम जिनको नहीं दिखाई देता उनके लिए कम है।
यानी ये कह रहे हैं कि नेत्रहीनों के लिए ये कार्यक्रम छोटा है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए
जी। और आगे लिखते हैं कि पत्र लिखवाने के लिए भी कम ही लोग मिलते हैं। और
इनको चिट्ठी लिखवाते हैं जब BBC के लिए, तो किसी से लिखवानी पड़ती है।
या
जी सुबेदार साहब, आपने चिट्ठी लिखी, पिथौरागढ़ के आप रहने वाले हैं, हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात सही है कि कार्यक्रम आधे घंटे का है शाम को और आधे घंटे का सुबह, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गागर में सागर भरें। बहुत ज़्यादा अगर लंबा कार्यक्रम हो और उसमें तत्व की बात न की जाए तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए सुनते रहिए।
हमारे पास काफ़ी सारी चिट्ठियां आई हैं विवेचना के लिए जो कि संजय गांधी पर हुई थी, रेहान फजल ने की थी और लोगों को बहुत अच्छी लगी। अशोक कुमार ठाकुर है मालीटोल अदलपुर दरभंगा बिहार से, और गोंडा से हमारे पास ये चिट्ठी आई है शिप्रा यादव की, इन्होंने भी यही लिखा है। और साथ में इन्होंने, इनके पिताजी उस वक्त रेडियो सुनते थे, तो कुछ दो लाइनें हैं अगर आप पढ़ें तो बहुत सुंदर है।
फूल दो दिन खिले पर जहाँ फिजा में दिखला गए, हसरत जो गुच्छों की थी वो बिन खिले मुरझा गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी सुंदर इनकी लेख है। गोंडा से शिप्रा यादव, देखिए स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ या महिलाएं हमें बहुत कम चिट्ठियाँ लिखती हैं, हम बार बार कहते हैं लिखिए, क्योंकि आपकी भागीदारी इस कार्यक्रम में होना ज़रूरी है, महिलाओं की भागीदारी होना ज़रूरी है। इसलिए शिप्रा, आपकी चिट्ठी का मुझे निजी तौर पे इंतजार रहेगा, BBC को इंतजार रहेगा।
और ये पोस्टकार्ड है नगेंद्र कुमार कुशवाहा पिपराही बाजार जिला शिवहर बिहार से, इन्होंने भी काफी तारीफ की है विवेचना की। और ये हमारे पास एक पोस्टकार्ड आया है असद अली जिला रामपुर
उत्तर प्रदेश से। पुराने श्रोता हैं, रोजाना पोस्टकार्ड लिखते हैं। क्या लिखा है यार?
दुनिया जहान कार्यक्रम सुना जो कि मोहनलाल ने प्रस्तुत किया था, बहुत अच्छा लगा।
बहुत बहुत धन्यवाद असद जी, कोशिश हमारी होती है कि शामिल होती रहे आपकी चिट्ठियाँ।
फेसबुक लाइव का मजा दुगना तब होगा जब वीडियो लाइव होगा।
ये ईमेल आया है,
ये मेल है
जी।
इस पर आप विचार कीजिए। जीशान नैयर है, गांव तरैया, पोस्ट सांख, जिला बेगूसराय।
बहुत दिनों बाद आज इनकी चिट्ठी शामिल हो रही है। जीशान भाई, इस बार तो खुश हो जाइए।
और हमेशा की तरह जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी से लिखते हैं कि समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट शौच के लिए श्रमदान सुना।
जो बांदा बुंदेलखंड की वो रिपोर्ट थी, बहुत ही अद्भुत रिपोर्ट थी वो।
आशुतोष कुमार पांडे आरा बिहार से लिखते हैं कि बीबीसी रेडियो से मोहब्बत जारी है, लेकिन बीबीसी के वेब पेज पर फेसबुक से प्रभावित सीरीज चलाई जा रही है। पीरियड वाला प्रायोजित एजेंडा सैनिटरी पैड कंपनी के इशारे पर चल रहा है।
प्रायोजित एजेंडा कह रहे हैं आशुतोष जी, आप किस आधार पर इसे कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शायद आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप उस अनुभव से गुजरते नहीं हैं, महिलाएं शायद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, लेकिन आपकी राय है तो सिर माथे।
दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि कितने ग्रामीण महिलाओं लड़कियों के अनुभव आपके पास आए पता नहीं, पर भागी हुई लड़कियां सीरीज में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो बता दे कि भागने का ठोस कारण क्या था। जब वो सीरीज चली थी तब की बात करते हैं।
हमारी कोशिश ये है आशुतोष जी कि आदमियों के मर्दों के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होती है, चाहे वो प्रसारण हो, पत्रकारिता हो, राजनीति हो, इसको बढ़ाने की कोशिश है बीबीसी की, इसलिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। मुझे लगता है अब हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं चलते चलते पता बता दूं।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहे तो hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब जल्दी जल्दी एक नजर खेल समाचारों पर नजर डाल रहे हैं। वैभव दीवान
बीबीसी खेल समाचार के साथ, मैं हूं वैभव दीवान। आज लंदन में शुरू हो गया है 140वां विंबलडन टूर्नामेंट। घास पर खेले जाने वाले विंबलडन में विश्व के सभी टॉप खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। आज पुरुषों के पहले दौर में विश्व नंबर एक ब्रिटेन के एंडे मरे का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक के साथ हुआ, जहां एंडे मरे ने पहले दो सेटों में आसानी से जीत दर्ज की। साथ ही विश्व नंबर चार पुरुष खिलाड़ी राफेल नडाल भी आज अपना पहला मुकाबला विंबलडन में खेलते नजर आएंगे। रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच का मुकाबला कल खेला जाएगा। क्रिकेट में जहां कल भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान को हराकर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत का सिलसिला जारी रखा, वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज में हो रही श्रृंखला में एक लो स्कोरिंग मैच में 11 रनों से हारे। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के पुरुषों ने 189 रन बनाए। इसके सामने भारतीय बल्लेबाज महज 178 रनों पर ही सिमट गए। टीम की इस हार पर भारतीय टीम के बैटिंग कोच संजय बांगर बोले,
शॉट मेकिंग वाजंट रियली इजी एंड दोज हैव बीन द नेचर ऑफ विकेट्स वी हैव सीन सो फार बिकॉज़
शॉट्स खेलना आसान नहीं था। वेस्ट इंडीज की पिचेस ऐसी ही हैं। हम यहाँ दो दिन पहले भी खेले हैं, विकेट स्लो हो जाती है, लेकिन हम अपने पोटेंशियल पर नहीं खेले और हमारे बल्लेबाजों ने हमें निराश किया।
वेस्ट इंडीज में चल रही 5 वनडे मैचों की श्रृंखला में अब बचा है एक मैच, जो होगा 6 जुलाई को। अभी तक की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, जहाँ एक मुकाबला बारिश के कारण से रद्द हो गया था। अब बात भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की, जो आजकल इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रही है। कल हुए मुकाबले में पाकिस्तान को भारतीय महिलाओं ने 95 रनों से हराया। भारतीय टीम की सदी हुई गेंदबाजी और फील्डिंग ने पाकिस्तान टीम पर नियंत्रण बनाए रखा। इस जीत के बाद बीबीसी ने भारतीय टीम की कप्तान मिथाली राज से बात की और पूछा उनकी काबिले तारीफ फील्डिंग के बारे में।
टीम के साथ तो फील्डिंग कोच ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी हर एक ट्रेनिंग सेशन में फील्डिंग सेशन ज़रूर होती है और टीम बहुत ही अच्छा कर रही है, पर हाँ कैचेस में बहुत वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें अच्छे टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ मैचेस जीतना है या अच्छा क्रिकेट खेलना है तो ये कैचेस लेना बहुत ज़रूरी है।
महिला वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर भारत ने 2 पॉइंट हासिल किया और वो लीग टेबल में सबसे ऊपर हैं। अगला मुकाबला भारतीय महिलाओं का इस विश्व कप में होगा 5 जुलाई को श्रीलंका के साथ। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीबीसी समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2019 के लिए वो न तो विपक्ष का चेहरा है और ना ही हो सकते हैं। सत्ताधारी महागठबंधन में तनाव की खबरों के बीच नीतीश ने कहा है कि महागठबंधन सरकार के कार्यक्रम लागू करना उनकी प्राथमिकता है। कतर के विदेश मंत्री ने पड़ोसी देशों की ओर से रखी गई शर्तों पर अपने देश का जवाब सामने रखा है। कतर का कहना है कि उसके सामने जानबूझकर ऐसी मांगें रखी गई हैं जिन्हें खारिज कर दिया जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर हुई बातचीत में कहा है कि दोनों देशों के संबंधों को नकारात्मक कारक प्रभावित कर रहे हैं। जर्मन अधिकारियों के मुताबिक देश के दक्षिणी हिस्से में हुए एक सड़क हादसे में एक बस में सवार 18 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बीबीसी समाचार। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।